صلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواتي نازعات. ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم رب کا شکر کیسے کریں. مختلف صاحبان علم نے اور مختلف اولیاء کرام نے اسے مختلف طریقے پر بیان کیا. لیکن سب سے آسان اور سب سے جامع اور مختصر اس کی ڈیفینیشن جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ رب تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو اس طریقے سے صرف کرنا کہ جو رب کا پسندیدہ ہو وہ شکر گزاری ہے. انہوں نے اس سلسلے میں جو بات جو مثال دی ہے وہ بھی کمال کی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ رب تعالی نے ہمیں ہاتھ عطا فرمایا ہے کہ ہم اس سے چیزوں کو پکڑ سکیں اور اس سے اس کو اس طرح سے استعمال کر سکیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچے. لیکن اس ہاتھ کا اگر ہم ایسا استعمال کر لیں جو رب کا پسندیدہ نہیں ہے تو نہ شکر گزاری میں چلی جائے گی بات. تو مثال یہ دی کہ ہاتھ سے ہم چیزوں کو پکڑتے ہیں لیکن اگر اسی ہاتھ سے کسی کو ہم تھپڑ دے مارے تو چیزوں کو پکڑنا اور اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا تو شکر گزاری ہے. لیکن اس انداز میں اسے استعمال کرنا کہ وہ دوسرے کی توہین اور تکلیف کا باعث بن جائے وہ نہ شکر گزاری ہے. تو آج مجھے ایسی راستے میں آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا تو یہ خیال آیا کہ اکثر و بیشتر سوال یہ پوچھا جاتا ہے تو میں یہ جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی جو شکر گزاری اور ناشکر گزاری کی تعریف ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں. اگرچہ شاید آپ سب کو ہی اس کے بارے میں علم ہوگا. اسی طرح جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک چیز اور بڑی خوبصورت بیان کی کہ انہوں نے اس کا جواب خود ہی دے دیا کہ ڈیفائن کر دیا کہ رب کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں اور ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں. مثالیں دے کے اسی طرح میں نے جناب امام غزالی ہی کی ایک بار بات کوٹ کی تھی کہ تصوف کی راہ پر چلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دل کو مختلف آلائشوں سے پاک کیا جائے. ये किसी साहब ने सवाल पूछा हुआ है कि क्या दुरूद शरीफ का वर्द करने से कल्ब जारी हो जाता है, और अगर हो जाता है तो कितनी तादाद में पढ़ने से हो जाता है। मेरे ख्याल में तो इससे कल्ब जारी नहीं होता। यह आपके सवाल का जवाब देने के बाद मैं आपसे एक चीज अर्ज करना चाह रहा हूं कि मैंने किसी जमाने में यहां एक गुजारिश की थी आपके खिदमत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद शरीफ की कोई हाजत नहीं है कि हम दुरूद शरीफ उन पर पढ़ें, इसलिए कि अल्लाह के महबूब हैं। ये दुरूद शरीफ अगर हम इस जज्बे से पढ़ें कि ये अज़राए शुक्रगुजारी के हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर ये एहसान अजीम फरमाया है कि अल्लाह ताला का हक पैगाम हम तक न सिर्फ ये कि बैन ही जैसे वो था वैसे पहुंचा दिया, बल्कि हमारी सहूलत के लिए अपनी जात पर उसे अप्लाई कर दिया, और बावजूद इसके कि ताकत और दस्तरस में था कि बड़ी शाहाना जिंदगी गुजारते, तो आपने एक फकीराना जिंदगी गुजारी है, सिर्फ उम्मत की तालीम और उनकी सहूलत के लिए। तो हम दुरूद शरीफ तो एहसान मंदी के जज्बे के तहत पढ़ते हैं। अगर हमने ये पढ़ा कि मेरा कल्ब जारी हो जाए तो नियत ही बदल गई बिल्कुल। वो तो फिर हम अपने फायदे के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो कोई ज्यादा शायद मेरे नजदीक शायद अच्छी बात ना हो। दूसरी बात ये है कि कल्ब जारी करके हम क्या हासिल करना चाहते हैं। ये कि हम जिस महफिल में भी जाएं और हमारा मुंह बंद हो और हमारे दिल से आवाज आ रही हो कि दिल हमारा अल्लाह को पुकार रहा है, तो क्या ये रियाकारी में नहीं दाखिल हो जाएगी ये बात कि हम लोगों को ये दिखाएं कि हम हमारा दिल पड़ता है। तो वो इबादत जो रियाकारी में दाखिल हो जाए उसका दर्जा आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। कल्ब की एक और बात, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई इबादत गुजार होगा? जनाब हजरत अली करम अल्लाह वजह से ज्यादा कोई इबादत गुजार होगा? इसी तरह दीगर साहबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या उनसे ज्यादा हम इबादत गुजार होंगे? किसी रवायत में किसी ने ये पढ़ा हो कि किसी का कल्ब इस तरह से सरे महफिल पड़ता था, तो हम उस तरफ क्यों जाना चाहते हैं जो साहबे कराम से साबित नहीं होती बात, बल्कि होना तो ये चाहिए, हक ये है कि अगर हम रब ताला को याद करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, उसे पुकारते हैं, तो दुनिया इसी धोखे में रहे कि इस शख्स को तो शायद कलमा भी नहीं आता। जनाब हजरत अली करमल्ला वजहू का एक फरमान है कि सबसे बड़ा जोहद जोहद को छुपाना है। तो अगर कल्ब हमारा जारी हो गया तो फिर जोहद छुपा कहां? तो ये थोड़ी सी बारीक चीजें हैं, इसको आप गौर फरमा लीजिएगा। इनका दूसरा सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए थे तो उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ी थी सब अंबिया कराम ने, तो क्या वो अपने अजसाम समेत वहां मौजूद थे? हालांकि उनका विसाल तो बहुत पहले हो चुका था। ये सवाल रोजे हिसाब के बारे में भी पूछा जाता है कि ख्याल ये है कि शायद जो हिसाब किताब होगा वो मैदान इरफात में होगा, ये आम ख्याल है। तो लोग ये पूछते हैं कि उस मैदान में अजल से अबद तक पैदा होने वाले तमाम इंसान जब इकट्ठे होंगे तो समा जाएंगे उसमें? तो हमारी तो एक सवाल ये भी आम पूछा जाता है कि आम आदमी, मैं शोहदा की बात नहीं करता या नेक लोगों की बात नहीं कर रहा है, आम इंसान, वो दफनाने के साल दो साल के बाद उनकी हड्डियां भी नहीं होती वहां, तो वो कैसे जिंदा कर लिए जाएंगे? इसका एक बड़ा आसान सा जवाब है अगर हम खुद अपनी ही जात से सवाल खुद ही कर लें, अस खुद कि सही है कि अकल में आने वाली बात नहीं है ये। लेकिन क्या ये अकल में आने वाली बात है कि इंसान की असल नापाक पानी का एक कतरा है, उस नापाक पानी के उस एक कतरे में, ये कैसे मुमकिन है कि उससे एक बड़ा खूबसूरत और मतनासिबुल आज़ा इंसान बन जाए उससे, जबकि ना हमारे किसी साइंटिस्ट ने वालदा के पेट के अंदर कंप्यूटर फिट किया है कि जिसको प्रोग्राम कर दिया कि ऐसा इंसान बनेगा, ना इस किस्म की कोई फॉरेन इंटरवेंशन हुई है इंसानी बॉडी में, वो अज खुद उस कतरे से खून पैदा होता है, वो खून लोथड़े की शक्ल इख्तियार करता है और उस लोथड़े से इंसानी आज़ा बन जाते हैं और बगैर किसी रीजन के इंसान का जो बच्चे का दिल है वो अज खुद हरकत में आ जाता है, अज खुद सांस लेता है, उसकी खुराक का बंदोबस्त मां के पेट के अंदर से ही हो जाता है, तो ये कैसे होता है? तो अगर हम इन चीजों पर गौर करने लग जाएं तो ये सवाल खुद ब खुद हमारे जवाब आ जाते हैं। तो साइंटिफिकली अगर बात बयान की जाए तो इसलिए कि हम साइंस की बात को जल्दी तस्लीम कर लेते हैं, तो साइंस ये कहती है कि डीएनए कभी नहीं मरता और इंसान की तमाम खसलतें, आदात व अतवार, तमाम चीजें उस डीएनए में महफूज हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि जब रब चाहे उस डीएनए से दोबारा से इंसान उठा लिए जाए? तो ये जो इक्तदा में नमाज पढ़ने की बात है उसी से मुतालिक है। ये एक तीसरा सवाल ये है कि मेराज पर जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्ल सदर किया गया था, तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई थी? हालांकि नूर को नूर से मिलने के लिए इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल दुरुस्त है कि नूर को नूर से मिलने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, इसमें शक नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसूरत बशर पैदा किए गए थे दुनिया में, बसूरत बशर तशरीफ लाए थे और इंसानी जिस्म की तमाम जरूरियात वैसी की वैसी थी जैसे और दूसरे इंसानों की। अगर उस जिस्म को, दिल को सीना चाक करके उसमें उसे गुसल दे दिया गया नूर में और नूर भर दिया गया, तो ये क्या इसकी तैयारी नहीं है कि वो नूर से मिल जाए, जाके मिलने? हम लोग रोज नहाते हैं, लेकिन अगर किसी खास तकरीब में जाना हो, आपने अपनी शादी पर जाना हो, तो क्या बिल एहतमाम उसका गुस्ल, और आजकल तो वैसे ही ब्यूटी पार्लर पर तशरीफ ले जाते हैं लड़के, वो क्यों होता है फिर? ये नूर का गुस्ल दिया गया था ताकि रब ताला से मुलाकात के लिए जब जाए तो मुजस्मे नूर हूं उस वक्त। एक साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं स्पीकर बनना चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बड़ी सिंपल बात है, एक प्रैक्टिस क्या कीजिए। तो पहली बात तो यह है कि अपना मुताला वसी कीजिए। अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो उसके लिए आपका मुताला बड़ा वसी होना चाहिए। वसी मुताले के बगैर आप स्पीकर नहीं बन सकते। जिस तरह एक अच्छा कॉमेडियन वही बन सकता है जिसकी ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है, कि वो जिंदगी को देखता है, उसे ऑब्जर्व करता है और उसमें से फिर वो चुटकुले बनाता है। इसी तरह स्पीकर के लिए बहुत जरूरी है कि उसका मुताला बड़ा वसी हो। मुताला वसी करने का बड़ा आसान नुस्खा है कि जो कोई चीज हाथ लगे उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, बगैर ये देखे इसका सब्जेक्ट क्या है और किसने लिखा है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो एक बार रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई तो फिर इंसान चीजें ढूंढता है कि मुझे पढ़ने के लिए कुछ ही मिल जाए। तो जब आपका मतलब वसी हो जाएगा और किसी एक सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो एक सब्जेक्ट पर बोलने के लिए भी आपको मालूमात दरकार होंगी दूसरी चीजों की, क्योंकि एक से बात दूसरी, एक से बात निकलती चली आती है, बात से बात आएगी आगे। तो जब तक के ऑलराउंड हमारा मुताला नहीं होगा हम किसी भी मौजू पर अथॉरिटी के साथ बोल नहीं सकेंगे। ये पहली बात तो यह है कि अपना मुताला वसी कीजिए। दूसरी बात यह है, अब तो बड़ी सहूलतें हैं कि ऐसे कैमरे हैं जो आपकी रिकॉर्डिंग खुद कर लेंगे, तो आप तकरीर कीजिए और फिर उसे टीवी पर चला के देखिए। तो उसमें जब आप अपने आप को एक तीसरा आदमी बन के सुनेंगे तो उसकी खामियां आपके सामने आएंगी, तो एक एक करके दूर कर लीजिए, यूं आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। और स्पीच करने का एक फन है, वो ये है कि ऑडियंस को बोर मत होने दीजिए कभी। अपने यहां मैंने जिनको इस सिन्फ की आला मकाम पर बैठे देखा वो अशफाक अहमद साहब थे। उनके पास ये फन शायद कुदरत की तरफ से था लेकिन मतलब बहुत वसी था उनका। तो वो जो बात कहना चाहते थे छोटी छोटी कहानियों की सूरत में बयान कर देते थे। यही तरीका मौलाना रोम का है जो अशफाक साहब से 800 साल पहले थे। उन्होंने भी जो उनकी तकरीरें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी छोटी छोटी कहानियां सी बयान की हुई है। उससे यह है कि ऑडियंस की दिलचस्पी खत्म नहीं होती। तो वो कहानियों का एक स्टॉक आपके जहन में महफूज होना चाहिए जो मौका महल की निस्बत से वो स्टोरीज आप छोटी छोटी स्टोरीज बयान करें तो लोगों की दिलचस्पी आपकी बात में कायम रहेगी और आपको वो गौर से सुनते रहेंगे। ये तो मैं अपनी तरफ से अर्ज कर रहा था। वैसे आजकल बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस यहाँ खुल गए हैं पाकिस्तान में जहाँ आदमी के मैनर्स एंड एटिकेट्स और लिखने का फन, बोलने का फन ये सिखाया जाता है। तो अगर आसान रास्ता लेना चाहते हैं तो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में दाखिला ले लीजिए और वहाँ सीख लीजिए कि अच्छा स्पीकर कैसे बना जा सकता है। लेकिन वहां भी जरूरत आपको इसी बात की पेश आएगी कि आपका मुताला उसके बगैर नहीं बोल पाता इंसान, बहुत दिक्कत होती है। ये सवाल है लेकिन इतना वसी सब्जेक्ट है कि इस पर इस तरह से बोलना शायद मुमकिन ही ना हो। किसी साहब ने फरमाया है कि बराए मेहरबानी बर्रे सगीर पाक व हिंद में सिलसिले कादरिया की सूफिया की आमद की तारीखी तफसील, उनके असलूब اور اسلام کے حیا اور ترویج پر روشنی ڈال دیجیے. بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ اتنی دیر میں کور کر لوں گا میں, ممکن نہیں ہے. اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ سلسلہ قادیہ کے کئی بزرگوں نے, جن میں پروفیسر حضرات بھی ہیں, کتابیں لکھی ہیں. کوئی کتاب لے لیجئے, اس کو پڑھنا شروع کر, تو اس میں آپ کو تمام تفصیل یہ مل جائے گی. یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ انسان اگر فطرتاً نرم مزاج ہو اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھے تو بعض رشتہ دار اور عزیز ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جن کو پورا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا. ایسے میں دوسرا انسان بھی مایوس ہوتا ہے اور خود کو شرمندگی, حتیٰ کہ افسردگی ہونے لگتی ہے کہ ہم دوسروں کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے. ایسے میں انسان کے کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اگر ایک چیز ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب رب کے محتاج ہیں, ہمارے پاس رب کے عطا کردہ وسائل ہیں جو باہر طور لمیٹڈ ہیں, یہ صرف رب ہے جو سب کی ضروریات پوری کر سکتا ہے, سب کے بگڑے کام سنوار سکتا ہے. تو انسان صرف اپنے لمیٹڈ وسائل میں رہ کے ایک محدود پیمانے ہی پر دوسروں کی خدمت کر پائے گا. ہمارے وسائل جس حد تک اجازت دیتے ہیں ہم دوسروں کی خدمت کر دیں, لیکن جو چیز ہمارے وسائل سے باہر ہے اس کے لیے مناسب لفظوں میں نہایت نرمی کے ساتھ اگر ہم معذرت کر لیں تاکہ دوسرے آدمی کا دل نہ دکھے, تو اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں. اگر خاندان میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جس نے کوئی گناہ کبیرہ جیسے قتل وغیرہ کیا ہو اور دھوکے اور فریب کے ذریعے سزا سے بچ گیا ہو اور اپنے جرم پر بھی پردہ ڈالے رکھے, لیکن کسی ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے, تو اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جانا چاہیے؟ مثلا اگر سر راہ یا کسی عزیز کے گھر ملاقات ہو جائے تو اس انسان سے کس طرح کا برتاؤ کیا جانا چاہیے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو سزا اور جزا کا حق رب کے ہاتھ میں ہے, دوسرا ملکی قوانین ہیں ہمارے. اور اس میں ہم پابند ہیں عدالت کے فیصلے کے. اگر کسی شخص نے یہ کام کیا ہے اور قانون نے اسے بری کر دیا ہے, چاہے وہ فیصلہ دھوکے اور فریب سے ہی آبٹین کیا ہے, تو اس کا معاملہ اب رب کے پاس چلا گیا کہ رب جانے اس کا کام. ہمیں بحثیت مسلمان کے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے. حقائق کو چھپانا نہیں ہے, وہ جرم ہے. लेकिन दूसरों के ऐबों पर पर्दा डाल देना, उनके गुनाहों को ढांप देना, ये मुसलमान का काम है। तो वो अदालत को, चूंकि अदालत से एक फैसला ले चुका, अब ये मेरा और आपका काम नहीं कि हम ये कहें कि अदालत ने गलत फैसला दिया या सही दिया। ये बात फिर उन जज साहब के नामा एमाल पर लिख दी गई है, जैसे भी फैसला आया है वो। और दूसरी चीज ये है कि वो दुनियावी अदालत को तो धोखा दे चुका, लेकिन रब को नहीं धोखा दे पाएगा। उसकी सजा उसके पास है, रब ताला के पास। और रब ताला दुनिया में भी सजा देता है और आखिरत में भी। लेकिन हम बहसियत इंसान अपने रवैये को उसके साथ नॉर्मल ही हमें रखना चाहिए, और दूसरों के गुनाहों पर, उनके ऐबों पर पर्दा डाल देना चाहिए। ये किसी ने एक सवाल पूछा है कि व्हाट इज द बेस्ट डाइट स्पेशली टू लूज वेट आफ्टर 50। मैंने शायद किसी पहले भी किसी मौके पे एक अर्ज की थी कि एक जमाने में माइन अख्तर ने टीवी पर एक लतीफा ये सुनाया था कि किसी गरीब आदमी बाजार गया तरबूज खरीदने लेकर आया, तो इत्तफाक की बात यह कि उस तरबूज को काटने पर उसमें एक जिन बरामद हुआ। तो जिन ने पूछा कि अब तुमने मुझे तरबूज से तो निकाल ही लिया है, तो चलो ये बता दो कि तुम्हारी एक ख्वाहिश क्या पूरी कर दूं। तो गरीब आदमी पहले सोचता रहा इतने पैसे इससे कहूं ले आए, तो सब पर ये हुआ कि वो तो खत्म हो जाएंगे कुछ अरसे में। तो बिलाखिर उसने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम एक आलीशान मकान मेरे लिए बना दो। तो जिन ने उसे कहा कि अबे पागल हुआ है, अगर मकान बना सकता होता मैं तरबूज में रहता। तो हजूर, अगर मैं ये जानता होता तो मैं अपना वजन न कम कर लेता। और ये तो लाइटर नोट पर बात थी, लेकिन इसका आसान तरीन तरीका मैं अर्ज कर देता हूं, और इससे अराउंड 15 पाउंड पर मंथ वजन कम होता है। ना तो स्किन इफेक्ट होती है उससे, ना इंसान में नकाहत पैदा होती है, फेस फ्रेश रहता है। ये आजमूदा चीज है। आप जी भर के, दिल भर के नाश्ता कीजिए, जितना भी हैवी करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन नाश्ते के बाद लंच तक का रोजा रख लीजिए, सिवाय पानी के आपने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। पानी पिए, इसी तरह लंच जो जी चाहे खा लीजिए आप, बगैर कैलोरीज गिने हुए। लेकिन लंच खाने के बाद फिर डिनर तक का रोजा रख लीजिए कि इस दौरान सिवाय पानी के आपने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। डिनर में जो जी चाहे खा लीजिए। तो ये रूटीन अपना बना लीजिए, हर महीने 15 पाउंड इक्विवेलेंट टू 7 kg ये रिड्यूस होता जाएगा, लेकिन उसके आपके जिस्म पर कोई बुरे असरात नहीं आएंगे। ये आपने एक ब्रांड इसमें डाइट का लिख दिया, मुझ पर किसी अदालत में केस करवा देंगे कि लोगों को बहका रहे हैं आप हमारे खिलाफ। ये जो ब्रांड आपने दिया है डाइट का, इसके बहुत लोगों ने किया है इसे, लेकिन एक तो उनका चेहरा, उसकी स्किन बिगड़ गई, अजीब सी हो गई, नकाहत भी हो गई लोगों को, और अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा दिखाई देने लगे। तो सबसे जो नेचुरल डाइटिंग का तरीका है वो यही है जो मैंने आपसे अर्ज किया, इसको इस्तेमाल कर लीजिए। इसमें ना तो कोई परहेज है, ना कोई आपके क्वांटिटी ऑफ फूड पर, फूड इनटेक पर कोई कदगन नहीं है, जो जितना जी जाए खा लीजिए, लेकिन वजन फिर भी कम हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्किन खराब नहीं होती आदमी की। इनका तीसरा सवाल यह है कि आई फील रियली मिजरेबल फ्रॉम मॉर्निंग टिल 2 PM एंड इट इफेक्ट्स माय डेली वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ा आसान सा काम है, अल्लाह ताला ने हमारे लाइफ साइकिल इस तरह बनाए हुए हैं कि उसमें दिन हमारे काम काज के लिए है, मेहनत मजदूरी के लिए है, और रात हमारे आराम के लिए है। जब हम इस नेचुरल साइकिल को तोड़ देते हैं कि रातें हमारी जागती हैं और दिन सोते हैं, तो फिर इंसानी जिस्म पर ये असरात ऐसे ही आते हैं। तो अब आपकी रूटीन रात 1-2 बजे सोने की है, जिन साहब ने भी सवाल लिखा, मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन ये मैं अर्ज कर सकता हूं कि आपके सोने की रूटीन जो है रात 1 और 2 के दरमियान है, और सुबह आप लेट उठते हैं। इस रूटीन को चेंज कर दीजिए, आप 10 बजे सो जाइए, सुबह फजर की नमाज के लिए उठ जाइए। शुरू के 4-5 दिन सख्त होंगे कि दिन में आप ऊँगते रहेंगे, लेकिन उसके बाद रूटीन आपकी सेट हो जाएगी, तो सेहत भी अच्छी होगी और ये फीलिंग्स भी तब्दील हो जाएंगी आपकी। ये बहुत सिंपल बात है। एक और सवाल इन्होंने लिखा है कि आई अंडरस्टैंड दैट यू डू नॉट कैटर ड्रीम्स, बट वन ड्रीम हैज मेस्ड अप माय हेल्थ एंड दैट आई सॉ ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर अगो, सॉ माय पीरो मुर्शिद विस्परिंग इन माय लेफ्ट ईयर यू आर इन्फिनिट। व्हेन आई वोक अप आई थॉट व्हाट कुड बी बिकॉज अल्लाह इज इन्फिनिट, so I prayed and asked Allah to forgive me. Since then I have been having vertigo imbalance problems. मैं इसीलिए वो साहिबान जो ख्वाब सुनाने के लिए तशरीफ लाते हैं, मैं उनसे एक बात अर्ज किया करता हूं। ख्वाब के मौजू पर यहां 2-3 नशिस्तों में बात हुई भी है। ख्वाबों को अहमियत मत दीजिए, और ख्वाब जो हमें दिखाई देते हैं उसको इंटरप्रिटेशन बड़ी दुश्वार होती है बास बात, उसका मतलब वो नहीं होता जो। तो अगर आपने पूरा ख्वाब बयान किया होता, अब 2 बजे से पहले का टाइम था, तो मैं उस ख्वाब को पढ़कर उसकी सही ताबीर आपको बता देता, ताकि आपको तसल्ली हो जाती नेक्स्ट संडे के लिए। ये पूरा ख्वाब लिखकर यहां रख दीजिए। तो मैं वैसे ही मौसूली तौर पर भी किसी का नाम नहीं पढ़ते, तो आपका नाम लिए बगैर मैं उसकी ताबीर बता दूंगा ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। लेकिन फिर अर्ज करूंगा कि हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने रब पे भरोसा रखिए, उसको पुकारते रहिए हर हाल में। रब ताला बड़ा मेहरबान है। मैंने तो उसको इसी रेफरेंस से पाया है कि इंतहाई मेहरबान है, बहुत ही मेहरबान, तो वो हमें तकलीफ नहीं देगा। نیکسٹ سنڈے کے تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.